मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ खबरों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और डेफिनेटली ये खबरें ऐसी हैं जो प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए, चूंकि अब आपके एग्जामिनेशन की डेट थोड़ी सी बढ़ गई है, 16 जून हो गई है, तो करंट अफेयर्स पर जो पूछे जाने की संभावना की तिथि है उसे भी हम थोड़ा सा बढ़ा करके देख सकते हैं। लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हीं चीजों को पढ़ें जो अभी के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अभी आपको मेंस भी देना है अगर आप सिविल सर्विस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी में एक निरंतरता लगातार बनी रहनी चाहिए। तो मैं कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम है कि आपने ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में सुना है या नहीं। ऑपरेशन इंद्रावती, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जब किसी भी घटना को लेता है तो बहुत ही वो वेल नोन घटना नहीं होती। इंपॉर्टेंट घटना होती है लेकिन वेल नोन नहीं होती, किसी न किसी वजह से वो घटना दब सी जाती है। जैसे ऑपरेशन इंद्रावती, इसके बारे में आपको ज्यादा सुनने को नहीं मिला होगा। हालांकि इस घटना का भी संबंध विदेश में जो हमारे भारतीय रह रहे हैं और जो फंस गए हैं उन्हें बाहर निकालने से ही है। एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे नागरिक विदेश में फंसे हुए हैं और उन्हें हमें सुरक्षित निकालना है, तो घटना तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि जो निकाले जाने वाले भारतीयों की संख्या है वो कितनी है और साथ ही वो देश कौन सा है। अगर वो देश छोटा हुआ, निकाले जाने वाले लोगों की संख्या कम हुई, तो डेफिनेटली वो फिर बहुत ज्यादा खबरों में नहीं आएगी और आप उससे वंचित रह जाएंगे। और जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पेपर सेट करने वाले जो व्यक्ति हैं वो इसी बात को पकड़ लेते हैं। तो ये जो ऑपरेशन इंद्रावती है ये बेसिकली हैती देश से जुड़ा हुआ है। हैती में ये ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। हैती कैरिबियाई देश है। देखिए, फिर आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ता है अपने नॉलेज को। अब हैती है तो हैती के बारे में आप जानिए कि ये देश क्या है, क्योंकि वहां हमारे भारतीय फंसे हुए हैं और वहां हमने एक ऑपरेशन शुरू किया है। तो बात केवल ऑपरेशन इंद्रावती जान लेने से खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि आपको उसके आसपास उसकी परिधि में भी जो जानकारियां हैं वो जुटानी होंगी। तो यहां हमारी परिधि कौन सी बन रही है, एक हैती बन रही है और दूसरी परिधि बन रही है इंद्रावती। हमें इनके बारे में भी डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी बातें जान लेनी चाहिए। जो हैती है वो कैरेबियाई देश है। कैरेबियाई देश जब हम कहते हैं इसका मतलब है कि कैरेबियन जो सागर है वहां का एक द्वीप है ये। कैरेबियाई सागर कहां है आपको बकायदे मैप पर लोकेट कर लेना चाहिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जिसमें कनाडा, उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको तीन देश आते हैं। तो जो मैक्सिको की जो पतली सी गर्दन जैसी जो रेखा है उसके राइट साइड में जब आप जाएंगे तो आपको कैरेबियाई सागर मिल जाएगा। यही कुछ देश है, उसी में से एक देश है हैती। सबसे इंपॉर्टेंट बात हैती की ये है कि देखिए, अमेरिका कब आजाद हुआ था ये आपको मालूम होना चाहिए। अमेरिका 1776 में आजाद हुआ था, ठीक है, उसी एरिया का देश 1776 में आजाद हुआ। और हैती अमेरिका के बाद आजाद होने वाला दूसरा देश है जो 1804 में आजाद हुआ, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ की जो आबादी है ज्यादा नहीं है, 1,15,00,000 के करीब लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि द्वीप है, द्वीप की आबादी ज्यादा होती भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ जो शुरू किया गया है ऑपरेशन उसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती क्या है आप जानते होंगे। इंद्रावती एक नदी का नाम है जो गोदावरी की सहायक नदी है। ये कहां से निकलती है, ये उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है। 390 किलोमीटर मोटे तौर पर कह लीजिए, 400 किलोमीटर लंबी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि बस्तर का जो जगदलपुर शहर है वो इस इंद्रावती नदी के किनारे ही है। ज्यादातर ये बस्तर जिले में बहती है। और यहाँ का जो जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, वो बहुत फेमस जलप्रपात है और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा नियाग्रा के बारे में भी जान लेना चाहिए। जो नियाग्रा जलप्रपात है वो बिल्कुल कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है, हम लोग गए हुए हैं। अद्भुत जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात। तो इस तरीके से जब कोई भी घटना हो, लेकिन एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगनी चाहिए। अगर आप सभी घटनाओं के बारे में ये करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, हमारे दिमाग की एक लिमिट है, फिर तो सब चीजें घिचपिच होती चली जाएंगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लगे उनके बारे में थोड़े से और डिटेल में हमें जान लेना चाहिए। इसीलिए एक उदाहरण के रूप में भी मैंने ऑपरेशन इंद्रावती को आपके सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आई है और चूंकि ये रिपोर्ट केंद्र सरकार ने दी है, केंद्र सरकार ने खासकर हमारे कोर्ट में जो मामले लंबित हैं उनके बारे में एक आंतरिक रिपोर्ट बनाई थी, वो सामने आई है। उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें पता चली है, इसीलिए मैं इस रिपोर्ट को ले रहा हूं। देखिए, जो जुडिशरी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जस्टिस तो इंपॉर्टेंट है ही। हमारे प्रियम्बल में जस्टिस की बात कही गई है और डेमोक्रेसी जस्टिस के लिए ही होती है। हर तरह की जस्टिस जो दिला सके उसी तंत्र को, उसी राज्य प्रणाली को हम लोकतंत्र कहते हैं, उनमें से लोकतंत्र भी एक है, राइट। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात जो बताई गई है उसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके बकायदे ऐसे राइटिंग में भी काम आएगा और आंसर राइटिंग में तो काम आएगा ही। इसमें बताया गया है कि हमारे देश में अभी 4,40,00,000 यानी कि 4.4 करोड़ केस लंबित है, सभी अदालतों को मिलाकर के 4.4 करोड़, ये दिमाग में रखिएगा। मजेदार बात यह है कि इसमें से 2.21 यानी कि 50% ऑलमोस्ट, इसी तरह से याद कीजिएगा नहीं तो आंकड़ों में आप उलझ जाएंगे, इसमें 50% केस तो ऐसे हैं जो 3 साल तक पुराने हैं। तो चलिए ये तो ठीक है, 3 साल तक पुराने हैं तो हम इसे बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर कुछ बाधाओं को हटा लिए जाए, और फिर ये बताया गया है कि यदि कुछ बाधाओं को हटा लिया जाए, और मजेदार बात यह कि वो बाधाएं बड़ी हास्यास्पद किस्म की हैं, बड़ी छोटी छोटी किस्म की हैं, तो बड़े आराम से 2.19 करोड़ केसेस यानी कि 50% केसेस को बड़े आराम से सुलझाया जा सकता, 1 साल के अंदर सुलझाया जा सकता है, कल्पना करके देखिए। क्योंकि जब केसों को सुलझाने के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, न्यायालय की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, न्यायाधीशों के पद बढ़ाए जाने चाहिए, हम यही कहते हैं ना। लेकिन यहां देखिए आपको एक दूसरा दृश्य मिल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए चौंकाने वाली क्या बातें हैं। पहली बात है कि लगभग 21% केसेस, मैं अब नंबर नहीं बता रहा हूं केसेस के ना, आप उलझ जाएंगे, 21% केसेस तो इस तरीके के हैं जो इसलिए लंबित हैं, पड़े हुए हैं कोर्ट में, क्योंकि पुलिस उसमें अपना काम कर ही नहीं रही है। मतलब उसमें पुलिस इन्वॉल्व है, पुलिस को रिपोर्ट देनी है और कुछ करनी है, और पुलिस ही अपना काम पूरा नहीं कर पा रही है। 21% पुलिस किसकी है, सरकार की है ना। तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है यहाँ, किसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, पुलिस की। अगर पुलिस ओवरबर्डेंड है तो नहीं तो पुलिस को जरा सा अलर्ट करने की जरूरत है कि भैया इस मामले में केस को निपटाओ, जल्दी से दायर करो जो भी तुमको न्यायालय में कहना है। 21% कल्पना करके देखिए। अब आप देखिए 21% तो ये हो गया, 17.6% क्या है। अब देखिए कि 17.6% यानी कि आप इसे 18% कर लीजिए, 18% केसेस ऐसे लंबित हैं जो केवल वकीलों के पेश न होने के कारण पेंडिंग है, वकील ही नहीं आ रहे हैं। अगर आप इस 18 और 21 को जोड़ दीजिए तो 49% यानी मोटे तौर पर 50% केसेस ऐसे हैं जो किनके कारण अटके हुए हैं, या तो पुलिस के कारण या वकीलों के कारण। और हम उंगली कहां उठाते हैं, उंगली हम उठाते हैं न्यायालयों की संख्या पर, न्यायाधीशों की कैपेसिटी पर, न्यायाधीशों की संख्या पर भी। तो आपको जो हमारे लंबित मामले होते हैं उनसे जुड़ा हुआ एक इतना मजेदार तथ्य पता लगा या नहीं लगा, इसे नोट कर लें, ये बहुत ही मजेदार है। और देखिए कुछ इसी तरह की बातें जब आप अपने आंसर में लिख करके आते हैं ना, जो सही होती हैं, तथ्यात्मक रूप से सही होती हैं और तार्किक रूप से बड़ी प्रबल होती हैं, तो उसका बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट एग्जामिनर के दिमाग पर पड़ता है। दोस्तों मैं यूपीएससी का एग्जामिनर तो नहीं रहा हूं, लेकिन यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर तो रहा हूं, मैं बता सकता हूं कि क्यों एग्जामिनर किसी को बहुत ज्यादा मार्क्स दे देता है। और मैं अपने खासकर डेली ऑडियो लेक्चर में इस तरह की भी बातें लगातार आप लोगों से करता हुआ चलता हूं। दोस्तों एक आपने सुना होगा शिव शक्ति पॉइंट के बारे में, शिव शक्ति पॉइंट, ये शिव शक्ति पॉइंट क्या है, ये बहुत ही एक सिंपल सा शब्द है। आपको मालूम है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है, इस चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, आपको पता है। तो जिस पॉइंट पर हमारा चंद्रयान 3 उतरा था उस समय भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसे नाम दिया था उस बिंदु को शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है बात खत्म हो गई। तो अभी इसमें नया क्या है, अभी इसमें नया ये है कि एक संघ है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसने इस नाम को मान्यता दे दी है, इस नाम को मान्यता दे दी है। तो इसे क्या हो गया, हम थोड़ा सा संघ के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो अंतरिक्ष विज्ञानी हैं, जो खगोल शास्त्री हैं, वो इसके मेंबर हैं। लगभग 15,000 इस तरह के जो वैज्ञानिक खगोल शास्त्री इसके मेंबर हैं। 85 कंट्री भी इसके मेंबर हैं। इसका पर्पज यही है कि जो विज्ञान है, जो खगोल शास्त्र है, इसके बारे में जानकारी देना, रिसर्च करना, बढ़ावा देना, ये सब इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ ये जो इस तरह के जो तत्व मिलते हैं, स्थान मिलते हैं, कोई चीज खोजने में आ गई अंतरिक्ष में, तो उनके नाम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देती है। तो ठीक है शिव शक्ति पॉइंट हमने तो कह दिया, तो हम तो कहते रहेंगे शिव शक्ति पॉइंट, लेकिन विश्व इसे क्या कहेगा। तो विश्व भी इसे तब स्वीकार करता है जब ये जो संघ है उसे मान्यता दे दे। तो दोस्तों, विश्व ने अब इसे आप यूं कह लीजिए कि एक तरीके से स्वीकार कर लिया है। ये जो संघ है 1919 में बना था, सोच करके देखिए, मतलब आज लगभग 104-105 साल पुराना संघ है। इसके महत्व को आप समझ सकते हैं, और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें थी जिन पर आपका बिल्कुल ध्यान होना ही चाहिए। तो अब आज के इस विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।